God's wrath.
जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा.
When his righteous judgment will be vindicated.
अपने लिए क्रोध जमा कर रहे हो.
Okay. So what do I do?
मुझे क्या करना होगा?
Before the conclusion number 4.
इस निष्कर्ष नंबर 4 से पहले.
The new heart can be hardened.
नया हृदय कठोर हो सकता है.
By stubbornness and a lack of repentance.
हटीलेपन से और पश्चाताप ना करने से.
So what does God do to this heart?
इस हृदय के साथ जो कठोर हो गया है परमेश्वर क्या करता है?
In his grace and his mercy.
उसका अनुग्रह और उसकी दया.
He allows the Holy Spirit.
उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा.
To prick.
वो मेरे हृदय को.
The calloused hardened heart.
चुभोता है. उस कठोर हृदय को चुभोता है.
So conclusion number 5. I've gone to conclusion number 5 is that the Holy Spirit pricks a calloused heart.
निष्कर्ष नंबर 5. पवित्र आत्मा हृदय में चुभन देती है जब वो कठोर हो जाता है.
So our conclusion so far.
अभी तक के हमारे निष्कर्ष.
The only normal person.
एक ही सामान्य व्यक्ति है यीशु.
Is Jesus because he is sinless.
क्योंकि वो पाप रहित है.
Sin is always the result of the internal environment and never the external environment.
पाप अंदरूनी वातावरण का परिणाम है ना कि बाहरी वातावरण का.
Salvation gives us a new heart.
उद्धार हमें नया हृदय देता है.
The new heart can be hardened by unrepentance and stubbornness.
नया हृदय कठोर हो सकता है हट करने और पश्चाताप की कमी से.
But God in his grace and mercy allows the Holy Spirit to prick the hardened heart.
लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय को परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा चुभोता है.
So what do I do?
मुझे क्या करना होगा?
I need to respond when the Holy Spirit pricks my heart.
जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में चुभन डालता है तब मुझे जवाब देना होगा.
How do we respond to the Holy Spirit?
किस तरह?
In brokenness.
टूटे हुए मन से.
Now I'm starting my message.
अब मेरा संदेश शुरू होता है.
Okay, so I'm going to talk about brokenness.
How? टूटे हुए मन के बारे में. मैं किस तरह परमेश्वर को जवाब दूं?
In brokenness.
टूटे हुए मन से.
What is brokenness?
क्या है टूटा हुआ मन?
Brokenness is when I arrive at a point.
टूटा हुआ मन जब एक ऐसी जगह पर मैं पहुंच जाता हूं.
इट इज व्हेन आई अराइव एट अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज.
जब मैं जान जाता हूं.
दैट आई एम नथिंग.
मैं कुछ भी नहीं हूं.
दैट आई एम वर्थलेस.
मैं कुछ काम का नहीं हूं.
दैट आई एम हेल्पलेस.
मैं असहाय हूं.
एंड आई कैनॉट डू एनीथिंग एल्स.
मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं.
इफ एनीथिंग दैट कैन हैपन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड.
अगर कुछ हो सकता है तो केवल परमेश्वर के द्वारा हो सकता है.
व्हेन यू रीच दैट पॉइंट.
जब आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं.
That is called brokenness.
वो टूटा हुआ मन है.
And when you reach that point, you say, God, I'm sorry that I've grieved you and I've dishonored your name.
जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं हम कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर. मैंने तुझे दिल दुखाया. मैंने तुझे आदर नहीं दिया है.
I want to be reconciled with you at any cost.
मैं तेरे साथ पुनः मेल करना चाहता हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए.
I don't want to be stubborn.
मैं हट नहीं करना चाहता हूँ.
I don't want to continue to sin.
मैं वापस पाप करना नहीं चाहता हूँ.
But I want to be reconciled with you and bring honor to your name.
लेकिन मैं तेरे साथ वापस मेल करना चाहता हूँ और तुझे आदर देना चाहता हूँ.
So the best example of brokenness in the Bible.
सबसे अच्छा उदाहरण टूटे हुए मन का है जो बाइबल में दिया है.
Is not Jesus.
वो यीशु नहीं.
Because there was never any need for him to repent.
क्योंकि उसे जो है पश्चाताप करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी.
Because he was never of sin.
क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया.
So for this one topic.
इस एक विषय के लिए.
I have to take the next best example.
इसलिए मुझे दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण लेना होगा.
And that example is David.
और वो है दाऊद.
So I'm going to look at Psalm 51.
इसलिए मैं भजन संहिता 51 देखूंगा.
But before I read Psalm 51.
लेकिन भजन संहिता 51 पढ़ने से पहले.
I have to give you a little background to the story.
उससे पहले की कहानी का कुछ विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ.
The story is in 2 Samuel 11, 2 and 5.
ये कहानी जो है दूसरा शमूएल 11, 2 से 5 के बीच में है.
It tells us that Samuel was a warrior, David was a warrior king.
ये कहता है कि दाऊद जो था वो युद्ध करने वाला वीर राजा था.
But this one time when his army went to war, he stayed at home.
लेकिन एक बार जब उसकी जो सेना है वो युद्ध के लिए गई तो वो घर बैठा रहा.
And as he was standing in his balcony,
और जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था.
He saw this beautiful woman having a bath.
उसने देखा कि एक खूबसूरत औरत जो है नहा रही है.
So he sent some people from his palace.
उसने अपने महल से कुछ लोगों को भेजा.
And inquired who this woman was.
उसने पता किया कि ये कौन है.
And he found out that this woman was married.
उसे मालूम पड़ा कि इसकी शादी हो चुकी है.
But he still desired this woman.
लेकिन फिर भी उसने उस औरत की चाह की.
So he brought her to the palace.
वो उस औरत को महल में ले आया.
And if you read the text, it says he raped her.
और उस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ उसने जबरदस्ती की ऐसा लिखा है.
But afterwards he found out that she became pregnant.
और उसके बाद उसे ये मालूम पड़ा कि वो गर्भवती हो गई.
Now one sin leads to the other.
एक पाप जो है दूसरे पाप की ओर लेके जाता है.
So now he had to kill the husband.
तब उसने सोचा कि अब उसके पति को मार डालना होगा.
So he gets Uriah, her husband, killed.
और उसके पति उरिया को जो है दाऊद मरवा डालता है.
And then he marries Bathsheba.
और वो बेथशेबा से शादी कर लेता है.
So that everybody will believe that it is a child that is born out of a legitimate marriage.
तो सबको ऐसा लगेगा कि ये सही ढंग का शादी के द्वारा उत्पन्न बच्चा है.
And 1 year passes by.
एक साल निकल गया.
God sends Nathan to David.
नाथान नबी को जो है परमेश्वर दाऊद के पास भेजता है.
And Nathan comes to David and says.
नाथान जो है दाऊद के पास आता और कहता है.
He gives him a parable.
वो एक दृष्टांत देता है.
And he says God is displeased with you.
और कहता है कि परमेश्वर तुझसे नाराज है.
But he says you are the man in that parable.
और वो कहता है तुम ही वो व्यक्ति हो जो उस दृष्टांत में है.
You have sinned against God.
तुमने परमेश्वर के खिलाफ
And God is displeased against
पाप किया है और परमेश्वर तुमसे नाराज है.
And then David repents.
और तब दाऊद जो है पश्चाताप करता है.
And then God says, I have forgiven you.
और तब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माफ किया.
Now when you read that verse,
जब आप उस वचन को पढ़ेंगे,
you might ask, how did God forgive a murderer and a rapist?
आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने एक जो व्यभिचार करने वाले व्यक्ति और हत्या करने वाले वो कैसे माफ कर दिया.
To get the answer to that,
उसका उत्तर यह है.
You must read Romans chapter 3 verses 25 and 26.
रोमियो 3:25 और 26 आपको पढ़ना होगा.
In that it says,
उसमें ये लिखा है.
For this outrageous sin,
इस खतरनाक पाप से.
The only answer to this outrageous sin,
एक ही उत्तर इस खतरनाक पाप से.
Is an outrageous death.
एक खतरनाक मौत है.
And Jesus decided to die on behalf of David.
और यीशु ने दाऊद की जगह पर मौत ले ली.
That's why David was forgiven.
इसीलिए दाऊद को माफी मिल गई.
Now God sent Nathan to prick the conscience of David.
परमेश्वर ने नाथान नबी को भेजा ताकि जो विवेक है दाऊद का वो टूटे.
So David could have said,
दाऊद कह सकता था,
that I am a great king.
मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं.
I have slain Goliath.
मैंने गोलियत को मारा है.
And every time I come back to Jerusalem after war,
जब भी मैं यरूशलेम में युद्ध के बाद आता हूं,
the people fall at me and say that Saul killed 1,000, David kills 10,000.
शाउल ने तो हजार को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, ऐसा लोग कहते हैं.
All the women like me.
और सारी औरतें मुझे पसंद करती हैं.
So why are you blaming me?
तो मुझे क्यों तुम दोष दे रहे हो?
That's exactly what Adam did. When God said, "Did you eat the fruit?"
तो आदम ने ऐसा ही किया जब परमेश्वर ने कहा कि जब तू फल खाएगा.
He said, "No, the woman that you gave me."
लेकिन आदम कहता है नहीं, वो औरत जो तूने मुझे दी.
She made me eat the fruit.
उसने मुझे ये फल खिलाया.
But what did David do?
लेकिन दाऊद ने क्या कहा?
Let's look at Psalm 51.
हम देखेंगे भजन 51 में.
So we can open to Psalm 51.
भजन संहिता 51. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे. देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा. देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा. जूफा से मुझे शुद्ध कर और मैं पवित्र हो जाऊंगा. मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा. मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं. अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर. मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल. तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे. हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले. तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा. हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा. क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता. होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता. टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे।
So what is David saying?
दाऊद क्या कह रहा है?
He is not saying that he is a great king.
वो ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा राजा है।
He is not saying you made me king and you gave me all this.
वो ऐसा नहीं कह रहा कि तूने मुझे राजा बनाया और तूने ये सब कुछ दिया।
He is not blaming the circumstances.
वो हालातों को जो है दोष नहीं लगा रहा है।
But he says,
पर वो कह रहा है,
only by your grace and your mercy,
केवल तेरे अनुग्रह और दया से,
can I even stand in your presence and talk to you.
मैं तेरी उपस्थिति में भी खड़ा रह सकता हूँ तो केवल तेरी दया और
अनुग्रह। He says, wash me, cleanse me and purge me.
वो कहता है मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, मुझे तू ठीक ठाक कर दे।
He's saying, I can only ask you of this because of your grace and mercy, not because of anything that I am done.
केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा, दया के कारण मैं तुझसे मांग सकता हूँ और कुछ नहीं।
So brokenness is understanding that the only reason I can stand in God's presence and ask Him anything is brokenness is understanding.
टूटा हुआ मन का कि ये वो समझ है जिसके द्वारा समझ ये हमारे अंदर मालूम पड़ता है कि केवल परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण हम उसकी उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं।
Not because I am a king.
ना कि मैं राजा हूँ इसलिए।
Not because I am a vice president.
ना कि मैं बहुत बड़ा वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
Anything, it is just the mercy and the grace of God that allows me to stand.
केवल दया और अनुग्रह परमेश्वर का जिसके कारण मैं उसकी उपस्थिति में खड़ा रह सकता हूँ।
And when he comes into God's presence, what does he say?
और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो क्या कहता है?
Wash me, cleanse me and purge me.
मुझे धोकर, शुद्ध कर और साफ कर।
You know why?
क्यों?
Because sin always leaves a scar and a stain.
क्योंकि पाप हमेशा एक निशान और एक धब्बा छोड़ जाता है।
God forgives us our sin.
परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर देता है।
But we must live with the consequences of our sin.
लेकिन उस पाप की जो मजदूरी है उसके साथ हमें रहना पड़ता है।
What was the consequences of David's sin?
पर दाऊद के पाप का जो मजदूरी था वो क्या था?
The child that was born had to die.
जो बेटा उसे पैदा हुआ वो मर गया।
And for generations he paid the price for what he did.
और कई सालों तक, पीढ़ियों तक उसने उसका मूल चुकाया जो गलती उसने किया।
Before he wrote the psalm,
उसने इस भजन संहिता को लिखने से पहले
he knew that God forgave him.
उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया।
But he had to live with the consequences of the sin.
लेकिन उस पाप की मजदूरी के साथ उसे रहना पड़ा।
So that's why he says, wash me, purge me.
इसलिए उसने कहा मुझे धोकर, शुद्ध कर दे, तब मैं साफ हो जाऊंगा।
Because the scar and the stain has to be washed.
क्योंकि जो दाग है और जो धब्बा है, निशान है, उसको साफ करना जरूरी है।
Because sin always leaves a stain in our lives.
क्योंकि पाप हमेशा हमारे जीवन में एक धब्बा छोड़ जाता है।
The second thing that sin does,
दूसरा जो काम जो पाप करता है वो है,
that sin always leaves a memory in our lives.
पाप हमेशा एक याददाश्त हमारे अंदर छोड़ जाता है।
The Bible tells us,
बाइबल हमें बताती है,
that God takes our sin,
परमेश्वर हमारे पापों को ले लेता है,
takes it away as far as the east is from the west.
उतना दूर कर देता है जितना है कि उदयाचल अस्ताचल से दूर है।
And then he casts it in the sea of forgetfulness.
और वो जो भूलने की जो समुद्र है उसके अंदर उसको डाल देता है।
But do you remember your sin?
क्या आपको आपके पाप याद हैं?
Do you remember all the sins that you have committed?
आपको वो सब पाप याद हैं जो आपने किए हैं?
So is the Bible not saying the truth?
क्या बाइबल गलत कह रही है?
Why do you remember your sin?
क्यों आपको आपका पाप याद है?
Because what the Bible says is God forgets his, just gets our sin.
क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों की माफी करता है।
But we will always remember us.
लेकिन हम हमेशा याद रख पाएंगे।
If you forget your sin,
अगर आप अपना पाप भूल जाएंगे,
there is a disease called amnesia.
तो एक भूलने की बीमारी है।
It's called amnesia disease.
एक बीमारी है भूलने की।
So we can never forget our sin.
तो हम जो है पापों को भूल जाएंगे।
Why? It is a good thing.
क्यों? ये बहुत अच्छी बात है हम ना भूल पाए।
Because I remember my sin.
क्योंकि मुझे अपने पाप याद हैं,
I am able to stand here and testify.
इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर गवाही दे सकता हूँ।
I know what I used to be.
मुझे मालूम है मैं क्या था।
And I know what God has done to me.
और मुझे मालूम है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ।
I can stand here and testify about it.
मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही दे सकता हूँ।
If I forgot my sin,
अगर मैं अपने पापों को भूल जाऊँ,
I cannot stand here and testify.
तो मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही नहीं दे सकता।
The other good thing about remembering my sin,
दूसरी अच्छी बात मेरे पाप मुझे याद है इसका है,
I don't want to repeat it again.
ताकि मैं दोबारा उसको न करूँ।
Because if I don't understand the consequences the first time, then I will never do it again.
अगर मुझे उसका परिणाम मालूम पड़ गया पहली बार में, तो मैं दोबारा वैसे पाप नहीं करूंगा।
And the third thing,
तीसरी बात,
इट हेल्प्स मी टू सेलिब्रेट इन द विक्ट्री ऑफ गॉड.
मुझे उत्सव मनाने में परमेश्वर के साथ ये बहुत मदद करता है.
बिकॉज इट शोज मी दैट आई हैव स्पिरिचुअली ग्रोन.
इससे मुझे मालूम पड़ता है कि मैं आत्मिक तौर से बढ़ गया हूँ.
यू नो व्हेन आई गो बैक होम एंड लुक एट माय फैमिली,
जब मैं घर जाकर अपने परिवार को देखता हूँ,
मेनी ऑफ देम आर अल्कोहलिक्स एंड डाइड यंग.
वो बहुत सारे उसमें से लोग जो है दारू के नशे में, दारू पीते पीते जवानी में मर गए.
सो आई ऑलवेज सिट डाउन इन अ रूम एंड से, व्हाई डिड यू सेव मी गॉड.
और मैं कभी कभी अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर कहता हूँ, पर प्रभु तूने मुझे क्यों बचाया.
आई कुड हैव आल्सो बिकम एन अल्कोहलिक एंड
डाइड. हो सकता है मैं भी एक नशाखोर होकर मर सकता था.
बट गॉड इन हिज मर्सी एंड ग्रेस,
लेकिन परमेश्वर ने अपने दया और अनुग्रह में
चोज मी एंड रेस्क्यूड मी,
मुझे चुना और बचा लिया.
सो आई कैन रिमेम्बर,
ताकि मैं याद रख सकूं,
हु आई कुड हैव बीन,
मैं क्या हो सकता था,
व्हाट कुड हैव हैपेंड टू मी,
क्या मेरे साथ हो सकता था,
इफ गॉड नेवर रेस्क्यूड मी,
अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया ना होता.
बट थैंक गॉड आई एम नॉट व्हाट आई यूज्ड टू बी.
लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, अब मैं वो नहीं हूँ जो था.
यू मस्ट ऑल बी एबल टू थैंक गॉड दैट यू आर नॉट व्हाट यू यूज्ड टू बी.
आप में से हर एक जन को धन्यवाद देना चाहिए कि आप वो नहीं है जो थे.
वी आर नॉट येट परफेक्ट,
हम अभी तक पूर्ण नहीं हुए.
बट वी आर ऑन आवर वे,
लेकिन हम उस रास्ते में हैं.
That's the glory and mercy of God.
और यही परमेश्वर की महिमा है, उसकी दया है.
And if you understand,
अगर आप समझ जाएं,
that's where God rescued you from,
कहां परमेश्वर ने आपको बचाया है,
then you will become broken.
तो आप टूट जाएंगे.
Because who God is,
क्योंकि जो परमेश्वर है,
and who I am,
और मैं क्या हूँ,
we must understand the difference in that.
उस फर्क को हमें समझना चाहिए.
We should never believe that we have arrived.
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पहुंच गए हैं.